तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। किस प्रकार राजा पुरंजन राजा था, लेकिन दूसरे जीवन में कौन बन गया? रानी बन गई। राजा से तो रानी होगा। तो इस प्रकार ये सिद्धांत है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, पुरुष बन सकता है, स्त्री बन सकती है, मनुष्य बन सकता है, पशु बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करेगा उसकी चेतना के ऊपर। अंते या मति जागति, जिसकी अंत में कैसी मति है उसी प्रकार की उसकी गति होगी। तो पुरंजन जो है स्त्री बन गया, वैधर्वी विदर्भ नरेश के यहां उसने जन्म लिया। अब उसकी जो है, जब स्त्री बन गया तो जवान हुई, तो उसका जो है शादी किसके साथ में कर दिया गया? मलध्वज महाराज के साथ में कर दिया गया। तो मलध्वज महाराज की जो है हम विशेषता सुने हैं। मलध्वज महाराज थे, वो कैसे थे? मलय पर्वत की तरह शक्तिशाली, बलवीर में कैसे थे? एक राजा के अंदर जो खूबी होती है, राजा पहले कैसा होना चाहिए? शक्ति संपन्न होना चाहिए, एक नहीं तो फिर वो राज्य क्या करेगा। तो मलध्वज कितने शक्तिशाली थे, तो उसकी तुलना मलय पर्वत से की गई है। मलय पर्वत का सब नाम सुने होंगे, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के लिए प्रसिद्ध है, कोई साधारण वृक्ष के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कि नहीं? तो मलध्वज जो है पर्वत चंदन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे पर्वत दृढ़ होता है, उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता, हिला डुला नहीं सकता, उसी प्रकार महाराज भी कैसे थे? बड़े ही शक्ति संपन्न थे। और दूसरी जो विशेषता थी, जैसे मलय पर्वत पर क्या, किसके लिए प्रसिद्ध है मलय पर्वत? चंदन के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी सुगंधी जो है सब जहां भी जो सूंघ लेता है तो उधर ही खिंचा चला जाता, लालायित हो जाता है, भाई खुशबू कहां से आ रही है इतनी सुंदर। इसलिए मलध्वज महाराज भी जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? अच्छी, सबसे अच्छी खुशबू चंदन से निकलती है, तो ऐसी और सबसे अच्छी खुशबू किसमें हो सकती है? भगवान की भक्ति में। तो दूसरी उनके अंदर खासियत ये थी कि मलध्वज महाराज कैसे थे, जैसे चंदन जो है अपनी खुशबू से सभी को आकर्षित करता है, अन्य दूसरी खुशबुओं को तिरस्कार कर देता है, ऐसे ही मलध्वज महाराज जो है भक्ति में इतने दृढ़ थे, इतने प्रभावशाली थे कि अन्य जो दूसरे मार्ग वाले, ज्ञान मार्ग वाले, कर्म मार्ग वाले, योग मार्ग वाले, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये सब थे, उनको क्या करता? अपनी खुशबू से सबको जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। जैसे चंदन की खुशबू सभी को आकर्षित करती है, करती है कि नहीं करती है? करती है तो हां बोलो, नहीं करती है तो ना बोलो, सभी को आकर्षित करती है। तो ऐसे ही ये किससे आकर्षित करते थे लोगों को? भक्ति के प्रभाव से, भक्ति रूपी जो है खुशबू से लोगों को क्या करते थे? आकर्षित करते थे। ये भक्ति का, इनके ऊपर भक्ति की जो शक्ति है उससे जो है क्या करते, जो भी मायावादी थे, निर्विशेषवादी, अन्य पंथ वाले, उनको क्या करते थे? अपने प्रभाव से, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के प्रभाव से उनको क्या करते थे? कृष्ण भक्ति में परिवर्तित कर देते थे। बोलो हरे कृष्णा। तो ये जो है मलध्वज महाराज के अंदर विशेष खासियत थी। तो हालांकि अब इनका जो शादी कर दिया गया, किसके साथ में? वैधर्वी का भी, जो वैधर्वी थी वो विदर्भ नरेश की जो है साक्षात पुत्री है, वो भी एक महारानी है और वो भी सर्वगुण संपन्न है। और इधर मलध्वज महाराज भी कैसे हैं? वो भी सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि भक्ति कर रहा है तो सर्वगुण हो ही जाते हैं उसके अंदर, उसको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ अर्जित करने की जरूरत नहीं होती है। तो इधर भी भक्त उधर भी भक्त, तो एक कम संभावना रहती है कि जो बच्चा आने वाला है वो भी भक्त न हो, है बहुत कम संभावना है कि वो भक्त न हो, अर्थात अभक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनसे जो कन्या का उत्पन्न हुआ, कन्या की जो प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में जो है कहा गया है असित इच्छणाम, असित मतलब श्याम, ईक्षण मतलब जिसके नेत्र, जिसके नेत्र कैसे थे, श्याम वर्ण के थे, या जिनके नेत्र कहां लगे रहते थे, श्याम पर लगे रहते थे, भगवान पर लगे रहते थे। तो असित इच्छणाम अर्थात वो जो उनकी पुत्री थी वो भी कोई साधन नहीं हुई भक्त के परिवार में। भक्त ये स्वाभाविक देखा भी जाता है, जहां जैसे कोई बोलते हैं कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है वो अलग चीज है, लेकिन बहुत से उनके अंदर अपने पिता को परिवार को देखते देखते बहुत सी दवाएं तो ऐसे सीख जाता है जो बड़ी आसानी से है कि नहीं, बड़ा इलाज नहीं कर सकेगा, फिर भी किसी को बुखार हो गया है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, क्या हो रही है, दर्द हो रहा है, बोला ये खा लो वो खा लो, तुरंत बता देता है। ये तो साधारण देखा जाता है भाई। तो इसी प्रकार भक्त के परिवार में जो कन्या का प्राकट्य हुआ वो भी साक्षात भक्ति देवी ही है। भक्ति भक्तों के घर में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जैसे भगवान का प्रादुर्भाव कहां होता है, भक्तों के घर में होता है, ऐसे ही भक्ति देवी भी भक्तों के हृदय में है। जब जो है नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत का चतुर कुमारों के द्वारा भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य पुत्र थे जो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया उन्होंने ज्ञान वैराग्य ने, तो बिल्कुल कैसे थे, बिल्कुल जर्जर हो चुके थे, मतलब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, पूर्ण रूप से वृद्ध हो गए थे, हड्डियां निकल आई थी, आंखें बैठ गई थी, बाल बिल्कुल श्वेत बगुला की तरह हो गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना जो, तो उससे क्या हुआ, जो ज्ञान और वैराग्य थे फिर से कैसे हुए, तरुणावस्था को फिर से प्राप्त कर लिए। जब भक्ति देवी ने देखा कि मेरे बच्चे फिर से तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो इतनी प्रभावित हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उस सबके सामने जब भागवत का समापन हुआ, तो उस समय तुरंत अपने बच्चों के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलते हुए भक्ति देवी क्या हो जाती, वहां पर प्रकट हो जाती है। तो जहां भजन करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वहां भक्ति का प्राकट्य होगा कि नहीं होगा, अवश्य ही होगा। ये साधारण सी बात है, ये सिद्धांत है, इससे कोई भी सिद्धांत जो है, देखो भगवान भी सिद्धांत, हालांकि परे हैं इन सारी चीजों से, फिर भी वो सिद्धांत नियम के मतलब पालन करते हैं। अहम भक्तों पराधीन है, भगवान बोलते मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान आते हैं, जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान फिर रोक नहीं सकते, जब भगवान आते हैं तो फिर भक्ति महारानी तो पहले आ जाती हैं, उनको मालूम चलता है कि यहां भगवान आने वाले हैं, तो भक्ति महारानी क्या करती है, वो पहले से आकर के वहां उपस्थित हो जाती है। तो भक्ति महारानी इतनी प्रसन्न हुई, तो तुरंत हाथ जोड़ करके कुमारों से कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब बताइए मैं कहां रहूं। तो कुमारों ने क्या कहा, चतुर कुमारों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, चूंकि आप भगवान को देने वाली है, इसलिए क्या करो, तुम भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो। बोलो भक्ति महारानी की। तो इसलिए भक्ति महारानी का वास कहां है, भक्तों के हृदय में। और जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, उसके बाद में स्वयं भगवान अपने पार्षदों के साथ में प्रकट हो गए, अर्जुन है, प्रहलाद है, उद्धव जी है, बलि महाराज हैं, सबके साथ हम भगवान प्राकट हो जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों से जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था, जो कन्या पुत्र हुई थी वो कैसी थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, उसका नाम प्रस्तुत नहीं किया है, बेदर भी उसको बोला गया है, विदर्भ नरेश की कन्या, विदर्भ की नरेश की, इसलिए उसको बेदर्भी बेदर्भी बोलते हैं। जैसे कौंती कुंती कुंती की पुत्री थी तो कुंती माता को कुंती बोलते हैं, कौंती नरेश की, तो इसलिए उनको बेदर्भी कहा गया। तो उन दोनों से फिर जो कन्या थी वो साक्षात क्या थी, भक्ति भक्ति थी। तो इसका जो भक्ति जो थी या भक्ति लता जिसको प्रभुपाद जी ने उसको भक्ति की लता मतलब भक्ति का अंकुरण हुआ, भक्ति की लता उसका जो है प्राकट्य हो गया, अर्थात भक्ति साक्षात उसके अंदर प्रकट हो रही है। तो भक्ति की अब शादी किसके साथ में की, तो अगस्त मुनि के साथ में शादी कर दी उनकी। तो अगस्त मुनि, अगस्त का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां संयमित हो, और मुनि का मतलब मन। तो संयमित मन, जिसका मन पहले से कैसा है, संयमित है, तो उसकी शादी ये स्वाभाविक ही, जब मन किसी का है तो स्वाभाविक ही उसको अच्छा, मतलब मन ही एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष से, ये जो मन है एक बंधन का भी कारण बनता है, मुक्ति का भी कारण बनता है। तो मुक्ति का कारण कब बनता है, संयमित मन, जिसका मन संयम में, संयमित मन की कैसे मालूम चलेगा संयम में है, तो उसकी इंद्रियां संयम में है कि नहीं, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि वास्तव में संयमित मन है। उनकी इंद्रियां, इंद्रियां मतलब संयम का मतलब होता है जहां इंद्रियों को चाहे वहां लगाना, और जब चाहे इंद्रियों को वहां से क्या कर लेने का, उठा लेने का, निकाल लेने, ये संयमित मन है। तो इसलिए इससे जो दोनों की शादी जो है किससे कर, दोनों की मुनि है संयमित मन और इधर भक्ति महारानी, तो जब दोनों का संपर्क हुआ तो जब फिर इधर भक्त है, भक्त परंपरा चालू हो रही है, तो भक्तों से फिर जो है भक्ति का एक दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। और भी इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन किया जो आप लोग सुने होंगे, सुने या कि नहीं सुने थे, बताया था ना पहले पिछली क्लासों में। तो उससे जो है सात पुत्र इनके उत्पन्न हुए, जो साधना भक्ति के क्या है, प्रथम सोपान कहलाते हैं, जिसको वैदि भक्ति कहा गया है। ये सात पुत्र उत्पन्न हुए और वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और दास्यम। ये सात पुत्र उत्पन्न हुए, ये वैदि भक्ति में ये जो है ये सात सोपान है। तो ये नवदा भक्ति के नौ वो है प्रोसीजर है। तो दो और कौन कौन से बचे, सख्यम आत्मनिवेदन। तो सख्यम आत्मनिवेदन कैसे प्राप्त होंगे, वो रागानुगा भक्ति है। तो ये जो है वैदि भक्ति, जब उसका हम विधि विधान से खूब ठीक ठीक से पालन करते हैं, निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में, तो वो धीरे धीरे अपनी गाढ़ अवस्था को प्राप्त करती है। फिर अर्थात उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके हमारी निष्ठा है, उसमें रुचि जागृत हो जाती है, निष्ठा आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वही वैदि भक्ति धीरे धीरे पालन करते करते जब गाढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो फिर वो रागानुगा में बदल जाती है। तो जब हम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके फिर वो रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होता है सख्यम और आत्मनिवेदन, ये वैदि भक्ति के प्रभाव से उससे जो है क्या है, ये अपने आप उसके अंदर प्राकट्य हो जाता है, उनका भी प्राकट्य हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए दोनों से जो है मन से और भक्ति देवी संयमित मन अगस्त जी से, अगस्त मुनि से, और जो क्या नाम है भक्ति लता से, जब उनका जो है विवाह कर दिया गया साथ में, तो उनका पुत्र कौन हुआ, दृढ़च्युत। कौन पुत्र हुआ, सुने हैं ना आप लोग, दृढ़च्युत उनका पुत्र हुआ। दृढ़च्युत का मतलब होता है भक्ति में क्या आ जाती है, फिर दृढ़ता आने लगती है। च्युत मतलब फिर पतित, भक्ति में जैसे भगवान ने गीता में कहा है, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते, यस्मिन स्तेन दुखेन गुरुणा अपि, गुरुणा का मतलब होता है पहाड़ जैसे दुख भी, यस्मिन स्थिते जब कोई दृढ़ता भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है, निष्ठा आ जाती है उसके अंदर, तो इस यस्मिन स्थिते न दुखे न विचाल्यते, दुखों में फिर वो विचलित नहीं होता है। कैसे दुखों में, तो कोई साधारण दुखों में नहीं, गुरुणा अपि, गुरुणा का मतलब पहाड़ जैसे दुख भी उसके ऊपर आ जाए, संकट आ जाए, न विचाल्यते, फिर वो विचलित नहीं होता, इसलिए उसको दृढ़च्युत कहा गया, उसका बच्चा जो पैदा हुआ। ये भक्ति में ऐसे करते हैं तो ये सब अपने अंदर ये सब होता है, तो दृढ़च्युत का जो है फिर प्राकट्य होता है, अर्थात बड़े बड़े संकटों को भी बड़ी आसानी से सह लेता है। जैसे आप लोग आए थे, मैंने देखा था बिल्कुल ठंडा था, पहले तो सोच रहे थे कोई नीचे नहीं बैठेगा, सब सीढ़ी पे ऐसे बैठ जाएंगे, लेकिन बाद में क्योंकि चूंकि जिनकी सत्संग में रुचि है वो कहाँ बैठेगा कैसे बैठेगा, वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता है, ठंडा है या गर्म है उससे ज्यादा उनको प्रभावशाली नहीं करते। तो इसलिए जैसे आप लोगों के अंदर भक्ति की दृढ़ता है, इसलिए तो नीचे बैठना स्वीकार किया। बोलो हरे कृष्णा। तो ये जो प्रभाव होता है उससे फिर क्या आ जाता है, उसका जो है प्रण दृढ़च्युत हुआ, और दृढ़च्युत का मतलब होता है भक्ति के अंदर उसकी क्या आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, बहुत निष्ठा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास ये सारी चीज की कोई चिंता नहीं करता। और फिर जो है उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो इडम बाह, क्या है इदम बाह, इदम बाहु, अर्थात इदम बाहु का मतलब होता है जिसका मन अभी क्या है, गुरु सेवा के लिए लालायित हो रहा है, भगवान की सेवा के लिए जो क्या कर रहा है, लालायित है। जैसे ही हम प्रोसीजर मतलब इन विधि विधानों का ऐसे जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो है जो रागानुगा के जो दो सोपान है वो भी प्राप्त हो जाते हैं, भक्ति के अंदर दृढ़ता आ जाती है, और जब भक्ति में दृढ़ता आती है तो गुरु में भी दृढ़ता आ जाती है, गुरु के वाक्यों में दृढ़ता आ जाती है। जैसे बताते हैं कि जो है जो इदम बाहु, इदम बाहु, इदम बाहु का मतलब होता है उसका जो नेक्स्ट जो सोपान है वो है गुरु के वाक्यों में पूरा फेद हो जाना, विश्वास होना, अब उसका मन जो है गुरु की सेवा के लिए, गुरु के निर्देशानुसार भगवान की सेवा के लिए क्या होता है, लालायित होता है। गुरु मुख पद्म चित्त्य, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तेते करिया एक्य आर न करिए मन आशा, इसमें भ्रण दृढ़ संकल्पित हो जाता है एकदम, आर न करिए मन आशा, ये बिल्कुल सत्य है, प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखा है, जो कोई गुरु में विश्वास के साथ में उनकी सेवा में और उनके वचनों में पूर्ण रूप से जो फेद कर लेता है, जो विश्वास हो जाता है उसका, तो फिर वो कभी भी भक्ति में उच्युत नहीं होता है, और च्युत होता भी है तो जैसे मतलब भक्ति को छोड़ करके भाग जाना फिर ना, नहीं, थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, और इतना इजी होता है उसके लिए भगवत प्राप्ति, बहुत ही जैसे बहुत साधनों का विधि विधान से और निष्ठा के साथ मन अपने बल पर भगवत प्राप्ति करना ही बहुत कठिन है, क्लेशो अधिकतर तेसाम, बहुत कठिनता होगी, लेकिन यदि कोई गुरु के वाक्यों में फेद है, गुरु की सेवा में जो लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये सत्य है, बहुत जल्दी ही वो भगवत प्रेम को, भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। बोलो हरे कृष्णा। ये जो है उसको फिर नेक्स्ट जो पुत्र हुआ इदम बाहु, अब गुरु के प्रति उसकी सेवा की भावना का प्राकट्य हो जाना, तो गुरु की सेवा आप सभी हैं, शारीरिक सेवा होती है और महत्वपूर्ण होती है वाणी सेवा, तो वाणी सेवा का मतलब होता है गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए वो दृढ़ हो जाता है और दृढ़ता उसके अंदर आ जाती है। फिर ये नहीं चलता है कि जी गुरु जी ने कह दिया जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, और उसको जो बहाना मार दिया, क्या करे गुरु जी तबीयत बहुत खराब है, कई दिन से जो है इतना परेशानी चल रही है, ठंडी बहुत सहन नहीं होती और ये समस्या वो समस्या, मतलब उसने जो है गुरु ने जो कहा है, क्योंकि गुरु का प्रतिनिधित्व, गुरु किसका प्रतिनिधित्व करता है? भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुरु के वाक्य जो है वो भगवान के वाक्य होते हैं, गुरु के, भगवान के वाक्य गुरु मुख से निकलते हैं। तो जब हम जो है गुरु कुछ कह रहा है तो समझना चाहिए भगवान के बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य है, इसी पे हमें फेद करना है। तो इसलिए उनको जो है प्रचार प्रसार के लिए, फिर जो है प्रचार प्रसार के लिए उनको निकलना चाहिए, सारे संसार में प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो जब ये जो चीज प्रक्रिया चालू होती है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, जो हम लाख कल के श्लोक में सुने थे, धीरे धीरे करके जो भक्ति के जो है सारे सोपानों को हम जो है इस प्रकार पालन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसके जो है द्वंद्वों से फिर मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? द्वंद्वों से फिर वो मुक्त हो जाता है। कल जैसे द्वंद्व बताए थे, सुख दुख मान अपमान, शीत सर्दी गर्मी, अधिक खाना कम खाना, कम कितना खाना चाहिए, युक्त आहार होना, ये सारी चीज ये द्वंद्व है। ये जो सोपान जब हम इस प्रकार चलेंगे तो ये सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते। भगवान ने भी गीता में कहा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो, समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समह संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतमोनि संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्यो प्रियो नरः। भक्ति मान्य प्रियो नरः, ओ नर मेरे को बहुत प्रिय है, कौन सा? जो इन द्वंद्वों से जो परे हो चुका है, द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुका है। सम शत्रु च मित्रे च, ये शत्रु है ये मित्र है, मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इन द्वंद्वों से परे होता है। ये द्वंद्वों से कब परे होंगे? तो ये जो है जो विधि बताई जा रही है, या इसके अंदर हम आगे के अंदर भी हम सुनेंगे कैसे साधना से फिर ये सारे, जिसको पक्व कसायो कहा गया यहां पर इस श्लोक में, ये सारे द्वंद्व है पक्व कसायो। यहां जो है पक्व मतलब जो उसके कसाय हैं, उसके जो जो क्या नाम है, या प्रभुपाद जी ने लिखा है कसाय का मतलब क्लेश मल, ये सारे मल क्या होंगे? यहां जो लास्ट श्लोक में बताए हैं ये सारे के सारे यहां वर्णन कर दिया गया, यहां कसाय, कसाय मतलब जो मल है, एक मल है अपने का, इस द्वंद जिसको बोलते हैं दो में, मतलब दो में जो फंसा हुआ है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, पीऊं ना पीऊं, ये सर्दी गर्मी सुख दुख है। सर्दी है तो जो है हिमालय वहां भाग जाना, क्या नाम है जहां साउथ की तरफ या बॉम्बे की तरफ, या गर्मी में फिर जो है हिमालय की तरफ भाग जाना, ये सब कसाय है, ये सब मल है। तो इसलिए इनसे क्या करना होगा, एक पक्व कसायो, पक्व मतलब बिल्कुल जल करके राख हो जाते हैं, सारे कसाय जल करके राख हो जाते हैं। कब कब हो जाते हैं? तो फिर इस आज के श्लोक में और हम सुन रहे हैं। तो पहला दिया है तपसा विद्यया पक्व कसायो यमयी नियमयी यमयी युजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षा निलासय। तो पहला यहां पर जो बताया गया है तपसा, तपसा तपसा मतलब तपस्या से, कल सुने थे हम कितनी मतलब तपस्या करनी चाहिए, कितना सर्दी गर्मी में विचलित नहीं होना चाहिए भूख प्यास से, तो ये सारी तपस्या है। इसके अलावा भी कुछ गीता में भगवान ने तपस्या का वर्णन किया गया है, तपस्या जो तीन प्रकार की जो तपस्या है, शरीर की तपस्या है, मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या है कि नहीं? शरीर की तपस्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ सोच सोच देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तक उच्यते। देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ देव मतलब देवताओं में, भगवान में, गुरु में, देव द्विज ब्राह्मण में और गुरु में, और प्राज्ञ का मतलब होता है जो भक्ति में है, जो बड़े चढ़े हैं, विद्वान हैं या मात पिता पर रखे हैं प्राज्ञ, तो उनका क्या करना चाहिए, पूजनम, उनमें पूजा भाव होना चाहिए, उनकी पूजा करने का भाव जागृत होना चाहिए, अर्थात उनकी सहायता, उनका मतलब सेवा करना चाहिए, पूजनम का मतलब सेवा करना, और पूजनम सोचम आर्जवम, सोच का मतलब होता है पवित्र, शरीर से कैसा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, शरीर पवित्रता, शरीर को पवित्र रखना ये तपसा है, शरीर की तपसा है। आर्जम सरल होना चाहिए, छल छिद्र कपट मोह नहीं भावा, छल छिद्र से बिल्कुल वो होना चाहिए, और आर्जवम सोचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अहिंसाम च, और अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हिंसा, एक तो शरीर की हिंसा कर देना, खत्म कर देना, और दूसरी हिंसा किसका वर्णन किया गया है, दूसरी हिंसा है जो भक्ति के, जो भक्ति में जाने के लायक है उसको हम प्रचार करके भगवत भक्त बना सकते हैं, या वो भी जो है लालायत है भक्ति को ग्रहण करने के लिए, लेकिन हम उनको न जा करके भक्ति का उपदेश नहीं करें, किसी को बस भगवत मार्ग में उसे आगे न बढ़ाना भी उससे भी ज्यादा जो है क्या है, हिंसा कहा गया है इसको। बोलो हरे कृष्णा, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है प्रचार नहीं करना। कितनों का जीवन जो है सार्थक बन सकता है यदि हम चाहें, प्रयास करें, डेली प्रयास करेंगे तो चलो कभी ना कभी, प्रभुपाद जी ने कहा मैंने मूवमेंट बनाई है जिसमें 10,000 मैंने शिष्यों को दीक्षित किया है, कई सारों को जोड़ा है, यदि इनमें से एक भी शुद्ध भक्त बनता है तो मेरे मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या हो गया, बिल्कुल पूर्ण हो गया। तो इसलिए हिंसा मतलब ये हिंसा है कि हम प्रचार प्रसार नहीं करें, ये भी हिंसा ही है। तो ये जो है शरीर की हो गई, इसी प्रकार जो है वाणी की तपस्या है, अनद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाक्मय तप उच्यते। वाक्मय तप उच्यते वाणी की तपस्या है, कौन कौन सी है, अनुद्वेग करम वाक्यम, अनद्वेग द्वेग जिससे द्वेग उत्पन्न हो जाता है वो वाक्य नहीं बोलना चाहिए, द्वेष उत्पन्न होने वाले अनद्वेग कर्म वाक्यम वो वाक्य बोलना चाहिए जिससे जो है उसके अंदर उद्वेग उत्पन्न हो, द्वेष भावना उत्पन्न हो, ईर्षा जलन न उत्पन्न हो, उसको ठीक न लगे, ऐसे वाक्यों को बोलना अनद्वेग कर्म वाक्यम। सत्यम और सत्य भी होना चाहिए, शास्त्र सत्य का मतलब शास्त्र के उस पर हमें करना चाहिए, हितम हितकारी होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे सो आप शीतल होए। ये बिल्कुल सत्य है, जब इस प्रकार की वाणी बोला जाता है अनद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, आप देखेंगे हम किसी का हित करेंगे तो अंदर से हमें भी कैसा लगता है, जिसने अनुभव किया है कि नहीं किया, अच्छा लगता है कि नहीं करता है। किसी ने हमसे पूछा भाई कोई जल्दी में या कोई परेशानी भाई है कैसे हो, हमने उसको प्रेम से बता दिया, जब अच्छा होगा ठाकुर जी कृपा से उस समय हमारा मन थोड़ा सा शांत हो ठीक है, नहीं तो कभी कभी इतनी झाड़ मार देते हैं उसको कि जो है फिर वो दूसरे से पूछने के लिए हिम्मत फिर से जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो यदि हमने ठीक उसको उत्तर दे दिया, अच्छा आपको वहां जाना है ठीक है आप ऐसा करो वहां से रिक्शा पकड़ लो और वहां से जो है क्या नाम है अटल्ला चुंगी से आप मथुरा चले जाओ, वहां वहां आपको जो है मिल जाएगा वो, तो फिर हमें भी अंदर से कैसा लगा, होता है कि नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है हमने कुछ कर दिया। तो जब इस प्रकार की जो भाषा हम यूज करेंगे, अनद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव, स्वाध्याय व्यसनम स्वाध्याय अभ्यसन मतलब अभ्यास करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? गीता भागवत का नित्य प्रति अध्ययन करना चाहिए। तो ये वाणी की तपस्या है और मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्म निग्रह भाव संसुति इति एतः तप मानस उच्यते। तो मन प्रसाद, प्रसन्न रहना। मन का प्रसाद क्या है? मन से संतुष्ट रहना है कि नहीं? ये सबसे बड़ा प्रसाद है। अब प्रसाद खा करके भी हम प्रसन्न नहीं हुए तो मन प्रसाद नहीं होगा। बोलो हरे कृष्णा। तो मन संतुष्ट, एन केन प्रकारेण, मन को क्या करना चाहिए? संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। मन संतुष्ट कब होगा? जब हम भगवत चर्चा के अलावा और कोई दूसरी चर्चा नहीं करेंगे तो मन प्रसन्न रहता है। और जैसे ही संसार की उसमें चर्चा हुई तुरंत उलझते जाते हैं। तो मन प्रसाद सौम्यत्यम, और उसको कैसा होना? सौम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए। यहां भी है मौन, जितना बोलना हो भगवान की चर्चा करो, नहीं तो ये वाणी को टट टट करने के अलावा चुप करके रखो। जब शक्ति लगानी है कि नहीं? क्षत्रिय जो है उसको गुस्सा जो है हर जगह नहीं प्रकट करना है। गुस्सा बहुत अच्छी चीज है। जब क्षत्रिय को गुस्सा नहीं आएगी तो आक्रमण क्या करेगा? शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करेगा? तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? मौन बोलना हो तो पहले उसको क्या करना चाहिए? पहले कुछ शक्ति पहले से ही अर्जित करके रखना चाहिए। नहीं तो बक 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 हम बोलते रहे सारे दिन, जब बोलने की जरूरत पड़ी तो फिर वहां हम जो है माइक के सामने बड़े खिसपिस हो रहे हैं। फिर है कि नहीं भैया? तो मौन हर समय, ये भी एनर्जी, बोलने से भी एनर्जी लगती है। आप देखो जब आप गर्मी में हम क्लास देते थे कभी शाम को, तो हम व्यासासन में बैठते पसीना पसीना हो जाती थी पीठ तो पसीना होती थी, फिर सारे कपड़े भी पूरा पसीना पसीना हो जाते। इसका मतलब है एनर्जी खत्म हो रही है। इसलिए इस एनर्जी को कहां लगाना है? प्रचार प्रसार के लिए, भगवान की सेवा के लिए इस एनर्जी को लगाना चाहिए। तो मौन, ये मौन भी एक बहुत अच्छा गुण है। और भाव संशुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये जो है तपस्या कहलाती है। भाव संशुद्धि इति इतः तपः मानस उच्यते। तो इसलिए तपस्या है, और तपस्या का फल हमेशा कैसा रहता है? हमेशा ही तपस्या का फल मीठा होता है। तो ये तपस्या, इस प्रकार की तपस्या उठानी चाहिए। जिन्होंने भी तपस्या किया है उन्होंने उनके जीवन में चमत्कार जरूर हुआ है। तपस्या का मतलब होता है जानबूझ करके भगवत प्रीत्यार्थ कुछ कष्टों को सहन कर लेना, यही तपस्या। एकादशी व्रत है, एकादशी की इच्छा नहीं होती है, जन्माष्टमी व्रत है, सुबह मंगल आरती आना, जप आना, क्लास सुनना भी बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ देखो ये कहाँ से आ जाती है मैया, जिसके हाथ पैर नहीं, कोई नहीं, उसका एक बच्चा था वो भी कहाँ भाग गया, फिर भी देखो इसके चेहरे पे कभी आपने रोती हुई इसको दिखाई दिया? जब भी देखा कूदती हुई दिखाई देती है। और जवानी में इसने कितने इसका वो होगा इसके अंदर, इस उम्र में भी आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भगवत कृपा है इसके ऊपर। तो इसलिए तपस्या, ये सारी तपस्या से उसके अंदर, जैसे कहा गया जो तपस्वी होता है उसके अंदर फिर क्या ना बुढ़ापा नहीं आता है, जवान रहता है, मन से जवान रहता है। शरीर से जवान दिखाई देने पर मरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल मरा हुआ है फिर भी कैसे लगते हैं? जवान लगते हैं, उत्साही लगते हैं। तो ये सारी तपस्या है, ये तपस्या है, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और विद्या वा विद्या है, भगवान ने गीता में कहा है विद्या नाम आध्यात्म विद्या अस्मि। विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं? आध्यात्मिक विद्या, ये विद्या है। इनको आध्यात्मिक विद्या का मतलब होता है, जैसे गीता में भगवान ने कहा ज्ञानम ते अहम सविज्ञान इदम वक्षामि अशेषतः। अर्जुन में ज्ञान दे रहा हूं, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सब विज्ञान है। ये कैसा है? बिल्कुल साइंस है। विज्ञानम ते अहम सविज्ञान इदम वक्षामि अशेषता यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस संपूर्ण ज्ञान में प्रदान कर रहा हूं। ये ज्ञातवा नेय भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जो इस ज्ञान को जान लेता है फिर उसे ब्रह्मांड में और कुछ दूसरा अर्जित करने की जरूरत नहीं रहती है। ये ज्ञान, ये विद्या है। भगवत गीता का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रस माले और मुहु रहो रसका भूविभाव का मुहु रसो मुहु 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 का मतलब अगेन एंड अगेन बार बार रस को क्या करो, इसको सुनो नहीं, पियो पान करो, इसको सुनना नहीं कहे, पान करने के लिए कहा। तो रसिक बनो, रसिक बनना है। रसिक नहीं बनेंगे तो ये पान नहीं कर सकेंगे, फिर उसको सुनेंगे। रसिक का मतलब होता है जैसे कोई प्यासा नहीं है, उसको कितना भी अच्छा पानी दो तो बोलेगा अरे प्रभु जी प्यास नहीं, पहले तो बोलेगा अरे नहीं नहीं पी लो, अच्छा कहां से लाए हो, अरे उस वहां से मटके से लाए, अरे बहुत ठंडा होगा, अरे नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा है कि नहीं, सौ बहाने मारेगा। लेकिन जो है क्या वन आपकी जो है जेठ अषाढ़ की गर्मी हो और जो है क्या नाम है राजस्थान का वो हो, वो प्यास लगी हो, तरस रहा हो, प्राण निकले जा रहे हैं, फिर इतने क्वेश्चन करेगा कहां से लाया है, ठंडा है कि गर्म है कि मीठा है कि खारा है। हमने देखा है, हम मैराथन में एक बार राजस्थान में गए जहां रुके तो वहां पानी नहीं था, सत्य बोले बाथरूम से पानी लेकर के वहां हम कुकिंग किए थे ठाकुर जी के लिए, पानी नहीं था कहीं। तो इसलिए मुंह रहो रस का, रसिक बनना पड़ेगा, रसिक ही मुंह रहो भाव का, रसिक जो भाव के हैं, जब तक हम रसिक नहीं बनेंगे नहीं तो सौ मतलब आर्गुमेंट करते रहेंगे, अरे कौन देगा क्लास, अरे वो क्या थोड़ा जान थोड़ी जानता है कुछ जाता, वो क्लास में उसकी क्या दम है उसकी में सारा कुछ ये आता है अरे देखा। तो इसलिए मुंह रस रसिका निगम कल्प तो गलितम फलम, कैसा फल है वैदिक शास्त्रों का, ये जो है परिपक्व फल है, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, बस उठाओ और पियो। तो ये विद्या और यम नियम, तो यम का मतलब होता है मन का संयम। इसमें बारह चीज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताए हैं यम नियम, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यम का मतलब होता है अहिंसा सत्य अस्तेयम, मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेयम किसी की वस्त्र को नहीं छीनना, असंग हिनी दीनता, दीनता जिसके अंदर हिनी उसको बोलते हैं, और असंचय संचय जो नहीं करता है, अस्तेयम आस्तिक है, भगवान के प्रति लालसा है, भजन करने की लालसा है, ब्रह्मचर्य मौनम और स्थिर स्थिर है, क्षमाशील है और अभयम अभयशील है। तो ये बोलते हैं बारह जो है क्या है अनुशासनात्मक शिक्षा है, अनुशासनात्मक, इनका हमें क्या करना चाहिए अनुसरण करना चाहिए, इनको मतलब ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। और फिर नियम ही इसी प्रकार बारह नियम बताए हैं, तो उसमें सबसे मुख्य चार नियम है, सोलह माला का जप है, मंगला आरती है, श्रीमद् भागवत का पाठ है। तो इनसे जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर युजय ब्रह्मण्य आत्मानम, ब्रह्मण्य आत्मानम युजय, तो मतलब अपने को जोड़ देते हैं या लगा देते हैं, युजज युज का मतलब स्थिर कर देते हैं, ब्रह्मणी ब्रह्मणी का मतलब भगवान में, जिसे पूरा श्लोक जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ब्रह्मणी के ऊपर किया है। ब्रह्मणी का मतलब निराकार में नहीं, या ज्योति में नहीं, या बिंदु पे नहीं, ब्रह्मणी का मतलब भगवान। मन को किस में स्थिर करना है, आत्मा न मन को युजय मतलब लगा देना, किस में लगा देते हैं, भगवान में लगाना, मन को भगवान में लगाना, अपने स्वयं को, प्रभुपाद जी ने लिखा है स्वयं को मतलब सारी क्रियाओं को, अपनी जितनी भी इंद्रियों जितनी इंद्रियां हमारी सारी इंद्रियों का लगाव किधर होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए, ब्रह्मणि भगवान में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदति तत्त्व विदम तत्व इत ज्ञान अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान यही है कि जो है वो ही भगवान ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में विराजमान है। तो भक्त लोग किस में अपना मन लगाते हैं, भगवान में स्थिर कर देते हैं, भगवान के चरणों में स्थिर कर देते हैं, जिस मन को फिर भगवान में लग जाना, मतलब फिर क्या है, इदम लब्ध्वा च परम लाभम न मन्यते तदिक्तत्, इदम लब्ध्वा च परम लाभम न मन्यते अधिकतत्। अर्थात जब किसी का मन भगवान में स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, यम लब्ध्वा इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, च अपरम लाभम और संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है, मन्यते ना अधिकतत्, और वो अधिक मतलब और दूसरे लक्ष्यों को लाभ को बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल जीरो है। अरे भाई जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, तो उसको फिर बढ़कर के और संसार में करना ही क्या, यही तो करना है। एन के प्रकार मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। तो इसलिए युजय ब्रह्मण आत्मानम, तो फिर उससे क्या होगा, इसमें दिया है मतलब आत्मानम का मतलब है उसका जो है विजेता अच्छ अनिल आशय। अच्छ का मतलब इंद्रियां, अनिल का मतलब है प्राण, और आशय का मतलब होता है चेतना या मन। जब ये संपूर्ण रूप से भगवान में लग जाते हैं, तो धीरे इस प्रकार जब भगवान में उनका ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो फिर क्या है पक्व कसायो, वो सारे मलों से मतलब क्या हो जाता है, परे हो जाता है, और जो भक्ति की जो उत्तम अवस्था है उसको धीरे धीरे क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यहां पर जो प्रसंग चल रहा है मलद्वज महाराज का, तो मलद्वज महाराज का क्या है कि धीरे धीरे वो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, अपने मन की जो सादिक जो कलमस थे, अपने घर को छोड़ देना, इतने बड़े राज्य को त्याग कर देना, सुंदर बच्चों को त्याग कर देना, ये कोई साधारण चीज नहीं है, इनकी आसक्ति को छोड़ देना। लेकिन अब उसने क्या किया, संपूर्ण रूप से इन सभी को परित्याग करके और अपने मन को कहां स्थिर कर दिया, भगवान में उसने अपने मन को स्थिर कर दिया। तो इससे जो है उसका मन भी भगवान में लग जाता है, प्राण भी उसके भगवान में लगे हुए हैं, इंद्रियां भी उसकी भगवान में लग जाती हैं। पक्व कसायो, सबसे पहले जो है प्रोसीजर जो विधि विधान है, हमारे कलमसों को खत्म करते हैं, और जैसे कलम खत्म हो जाते हैं तो शरीर की सारी क्रियाएं किस में हो जाती है, फिर किसकी तरह केंद्रित हो जाती हैं, भगवान की तरफ केंद्रित हो जाती हैं। जिस प्रकार गंगा का पानी सीधा जो है अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है, समुद्र की तरफ दौड़ता है, कोई पहाड़ आ जाए तो उसको मुड़ जाता है, कोई छोटा मोटा आया उसको तोड़ता हुआ निकल जाता है, वो जो है स्थिर सीधा कहां जाकर के स्थिर होता है, जब मतलब गंगा में जाकर के मिल जाता है। ऐसे हमारा जो लक्ष्य है, इन जब प्रोसीजरों को करेंगे तो शुद्ध होकर के फिर सीधा मन कहां स्थिर हो जाएगा, भगवान में स्थिर हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है ये आपका जो प्रसंग हम चालू कर दे, आज वैसे सारंग ठाकुर का वो भी था, तो उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तिरोभाव दिवस था, तो इतना ही हम कहेंगे सारंग ठाकुर के लिए। हम यहां भी सारंग ठाकुर प्रभु है और उनके भी गुण बहुत अच्छे हैं, ऐसे यहाँ भी जो सारंग ठाकुर है बहुत मेहनती है। इनका जो जन्म है अषाढ़ मास की चतुर्दशी को हुआ था, मामगाछी मोदद्रुम द्वीप, मोददम द्वीप ये जो है क्या नाम, नवद्वीप के पास में ही है, और इसमें जो है मामगाछी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इतने कठोर परिश्रमी थे, सारा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे, अकेले घर नहीं था, कुटिया नहीं थी, एक बकुल के नीचे बैठ करके और भगवत सेवा में लगे रहते थे, कल्पना करो। उनकी सेवा के लिए कोई सहायता करने वाला नहीं था, इनके गुरु मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा तुम शिष्य बना लो, लेकिन उन्होंने कहा अरे इस झमेले में कौन पड़ेगा, शिष्य विष्य के झमेले ना पड़ करके स्वयं उनकी सेवा करते थे, उनके लिए पानी लाना, गंगा जी से फल फूल लाना, और उनके लिए जो है ड्रेसिंग के लिए लाना, फिर उनकी कुकिंग के लिए सामान एकत्रित करना, मांग करके लाना, सब्जी है चावल है जो भी है मांग करके करना, पूरा दिन इसमें वो व्यस्त रहते थे। और जब थोड़ा बहुत समय निकलता था तो सीधे गंगा को क्रॉस करके कहां पहुंच जाते थे, नवद्वीप पहुंच जाते थे, और वहां चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में क्या करते थे, शामिल हो जाते थे। एक बार देखा कि इनका जो जहां जप करते थे, उन्होंने देखा कि वो भी धीरे धीरे करके सूख रहा है, सूख क्या रहा, सूख गया था पूरा, सूख रहा नहीं तो सूख गया था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारंग ठाकुरे क्या हो रहा है, ये तो सूख रहा है, आपके लिए कहां दूसरी व्यवस्था? बोला प्रभु आपकी कृपा के बिना और कुछ दूसरी व्यवस्था कोई नहीं, हमारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो महाप्रभु ने देखा है इतना, मतलब उसकी भक्ति भावना से उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, और उन्होंने बकुल का क्या किया, आलिंगन कर दिया। और जैसे ही बकुल का आलिंगन किया, फिर से जो है कैसा हो गया, एकदम हरा भरा हो गया, फल निकल आए, फूल निकल आए, और तुरंत जो है पहले मतलब उसकी पत्तियां निकली, कोपला निकली, फिर फूल निकले और फिर फल निकल गए, फल फूल गया एकदम महाप्रभु के आलिंगन से। वो इतना फेमस हो गया कि लोग उसकी एक एक लकड़ी के लिए तरसता करते थे, उसको जो है गले में डालते थे, क्योंकि सिद्ध बकुल हो गया। जैसे यहाँ आप देखे ना, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल है, ऐसे ही जो है ये सिद्ध बकुल बन गया पूरा, एक एक लकड़ी के लिए लोग तरसता करते थे उसके लिए। तो एक दिन जो है चेतन महाप्रभु ने कहा कि नहीं तुम शिष्य बना, तो उन्होंने ज्यादा ही जबरदस्ती की, तो बोला ठीक है आज जो मिल जाएगा उसी को हम शिष्य बना लेंगे। और सवेरे उठ करके गंगा जी में नहाने के लिए चले गए, तो जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा कोई शरीर से टकराया, उन्होंने बोला इसी को शिष्य बना देते, उन्होंने उठा करके देखा तो मुर्दा था। अरे भगवान, तो मुर्दा था, तो महाप्रभु ने फिर जो है पीछे से कही दो मंत्र इसी को दे दो, प्रेरणा जागृत की महाप्रभु ने, इसी को शिष्य बनाओ। तो उन्होंने उसके कान में मंत्र फूंक दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही मंत्र फूंका, इसके प्रभाव से उठ करके वो बैठ गया और पैर पकड़ लिए, गुरुदेव मैं आपका समर्पित शिष्य हूं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। अरे भाई, क्या नाम है, बोलते हैं मतलब हजारों तारों में जो है एक जैसे चंद्रमा, सतई तारणी, मतलब चंद्रमा करोड़ों तारों में भी कैसा है, सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। अब हजारों शिष्य बनाए और गुरुजी कह रहे हैं भाई सुनो सुनो थोड़ा सा, अरे गुरुजी टाइम नहीं, थोड़ा उसको बोल दो ना, उसको बोल दो ना। तो इससे अच्छा एक शिष्य ही बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी एक शिष्य बहुत है। तो इस प्रकार महान आज्ञाकारी, आज्ञाकारी था ही, इसके साथ साथ उसके विशेष गुण थे, बड़े बड़े भयानक सर्पों को गोदी में बिठा लेता था, उनसे खेलता रहता था, बहुत शक्तिशाली था। तो इस प्रकार और भगवान की भक्ति में वो भी अटूट, उसका जो है नाम रखा उन्होंने जो है सारंग मुरारी ठाकुर, मुरारी ठाकुर, फिर उसको कभी कभी सारंग मुरारी ठाकुर भी कहते थे। इस प्रकार उसका जो है नाम रखा। आगे चल करके उनके पिताजी आए थे, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा पुत्र था वो तो मर चुका था, और उनको प्रभावित कर दिया था गंगा जी, पहले जो वहां मर जाते थे ऐसे, तो क्या करते थे उसको ऐसे ही प्रभावित कर देते गंगा जी, तो इसलिए फिर वो घर के लिए नहीं गए। हम होते तो हो सकता है कि घर के लिए फिर से चल पड़ते, लेकिन वो नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात। और इस प्रकार जो है सारंग ठाकुर ने अगहन मास शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान कृष्ण लीला में उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया, अर्थात जय सारंग ठाकुर त्रिभुवा महामहोत्सव गे ग्रंथराज श्रीमद भागवत महाप्राण गे समवेत वैष्णव भक्त वृंद के निताई गौर प्रेम नंदे।